स्रोत निकलता है वो श्रीमती राधिका जी से वो स्रोत निकलता है जिसमें कृष्ण स्नान कर लेते हैं। इसलिए आद्यरस जिन राधा कृष्ण से या केवल राधा से ही कृष्ण उनके पास में आते हैं, इसलिए ये आद्यरस होना चाहिए। रूप गोस्वामी ने कहा तो बहुत अच्छा, रूप गोस्वामी उनका रूप गोस्वामी का वो पीठ थप, वाह वाह सुंदर अर्थ तुमने बतलाया, अब तो मैं इसको मैं लिखूंगा। किंतु भाई और से सामंजस्य कैसे होगा, जन्मादर्श जता है ना, इसके बाद में क्या है, अन्वयादि इतरतस्य, इसका अर्थ कैसे लगाएगा, उसमें तो लगाया गया है हमारे सिद्धर स्वामी इत्यादि ने लगाया है, कैसे अर्थ लगाया,
अन्वय व्यतिरेक में सृष्टि होती है,
सृष्टि होती है, इसका ये नहीं मत का अर्थ लगे, यहाँ पर लगा दो अर्थ, कैसे लगाएगा। रूप गोस्वामी बहुत सीधा है ये तो, अरे मान करती हैं विप्रलम्बस्मते ये हो गया व्यतिरेक, और जब मिलन हो करके राधा जी के चरणों में शीश नवाते हैं आदमी अरे बस उनको धात उनके गले में लगा लिया का जब वाह 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 बस ऐसे ही ये तो पहला श्लोक है जिसका अर्थ बहुत व्यापक है। सत्यम परम धीमहि, वो परम सत्य समुझे राधा जी हैं, धीमहि राधा जी का ध्यान करते हैं, क्योंकि गायत्री में कहा गया है ना, गायत्री स्त्रीलिंग है ना पुलिंग है, तो इस मंत्र के अधिष्ठाता कौन होंगे, स्त्री तो कौन है, श्रीमती राधिका जी। लोग आज तक इस चीज को नहीं समझते, या तो कुछ सूर्य को या विष्णु को या अधिक से अधिक कृष्ण को मान लेंगे, किंतु ये पहला श्लोक और गायत्री का ही ये भाष्य है, इसलिए दोनों का एक ही अर्थ, सत्यम परम धीमहि, जिसे आदर्श की सृष्टि होती है प्रकाशित होता है, ये वो जो श्रीमती राधिका जी हैं वही सत्य हैं, परम सत्य हैं, उनको मैं ध्यान करता हूँ, उनके ध्यान करने से कृष्ण का भी उसमें आ जाएगा, नहीं तो अपूर्ण रह जाएगा, इसलिए सत्यम परम धीमहि। ये तभी संक्षेप में केवल बतलाया, बहुत ही एक एक पद का एक एक उससे सामंजस्य करके इसका अर्थ लगाया, कहिए ये तो बहुत सुंदर बात, करते करते ये 10 बज गया, 11 बजे ये प्रश्न हुआ, सनातन गोस्वामी जी कह रहे हैं जी भाई ये तो बड़ा सुंदर अर्थ लगा दिया, बीच बीच में हमको जहाँ संदेह होता है मैं जानना चाहता हूँ थोड़ा सा बतलाओ, कहिए मैं तो कुछ जानता नहीं, तो आपके चरण की धूली उनकी ले लिया और अपने सिर में चारों तरफ लगा लिया, का जी अच्छा पूछे आप ही प्रेरणा दे करके आप ही उत्तर देंगे। तो उन्होंने कहा अच्छा भाई उस श्लोक में जो कुटस्थ शब्द है कुटस्थ
मधुद्दिश
ये तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है, ये कैसे कुटस्थ मधुद्दिश ये कैसे हो जाएगा,
रतिरासो भवे तीव्र,
रतिरासो भवे तीव्र
व्यसनो जनार्दन,
व्यसनार्दन जनार्दन, भाई इसका अर्थ कुटस्थ का अर्थ क्या होगा, क्या श्लोक का प्रारंभ क्या है, रतिर्वासनाया क्या, अच्छा अच्छा जाने दो, कुटस्थ को कहिए कुटस्थ का शब्द तुम अर्थ लगा देगा तो बाकी हम सामंजस्य कर लें, कहने कुटस्थ मैंने तो साधारण रूप में सिद्धर स्वामी इत्यादि ने जो अर्थ लगाया है कुछ ठीक किंतु भागवत के अनुरूप नहीं है, निगम कल्पतरूर जो श्लोक है इसके अनुरूप नहीं है, और अब कुटस्थ माने होता है जो सब समय एक रस संसार के या अन्य कोई भी रस में प्रवाहित न हो, नित्य सदा सनातन एक ही रूप में रहे, जो कि जैसे कभी हंसना कभी बोलना आसक्त होना दुखी होना ये सब न रहे, संसार से अनासक्त हो करके सब समय अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि, ये लोग कुटस्थ है, ये हमको रुचकर एकदम नहीं हुआ, ये तो साधारण से भी गया विचार, कृष्ण के रस में भक्ति रस में सब समय एक समान रस में रहे वो कुटस्थ, ये कुछ कुछ लिया जाता, इसके बाद का तुम कुछ और नया कुछ लगा सकता है, नया तो नहीं लगा सकता किंतु ऐसा भी, अच्छा आप बतलाए तो ऐसा हो सकता है तो क्या अच्छा कृष्ण तो गिरिराज जी में ऊपर में उठ करके गैया चराते थे और सब गोपियां वहां पर उनको घेर करके रखती थी, तरती रासो कुटस्थ जो कुट के ऊपर में गोवर्धन के ऊपर में जो खड़े हैं या गोवर्धन के तराई में, और गोपियां चारों तरफ से घेर करके उनको घेरी है, तो उस पर रहने वाले जो कृष्ण हैं और वहीं पर भवेत्र क्या तीव्र वहीं पर रास करने की लालसा जग गई किनको? कृष्ण को। कुटस्थ है ना, और वहीं से गोपियों का सौंदर्य माधुर्य देख करके लालसा हुई, बंसी बजाई और गोपियां चारों तरफ से आए। एक और भी अर्थ है किंतु अब इसको मैं नहीं बतलाऊंगा। कौन कह रहा है? नहीं, मैं ये साधारण अर्थ नहीं है, ये हम साधारण लोगों के लिए नहीं। तुमने अच्छा अच्छा कान में हमको बतला दो। तब उन्होंने कुटस्थ शब्द का अर्थ किया जिस पर खड़े होकर के गोपियां जिन पर खड़े उनको स्पर्श कराती हैं उनके चरण कमलों को, ये जो कुटस्थ है। हमारे सनातन गोस्वामी इस अर्थ की भावना और कल्पना करके गदगद हो गए और सोचा जो रूप को अब मैं एकदम न्योछावर कर दूं अपने को, अजय बस अब ठीक है, अब हमारी वैष्णव तोषिणी की टीका अब खूब सुंदर रूप से चलेगी। ऐसे ही जहां जहां जब जब जरूरत हुई सनातन गोस्वामी ने अद्भुत अद्भुत अर्थ किया और हमारे विश्वनाथ चौगर्ती ठाकुर जी उनके चरबित चरवन को फिर से पान करके और जो कुछ छोड़ दिया है ये उनका सब एक छिटकी फुटकी हम आप लोगों को बतला रहे हैं। ये रूप गोस्वामी की ही कृपा है। ऐसे ही होते इस स्थल पर ये है कदम बटेर है, कोटि कोटि गायों को अपनी मालाओं पर गणन करते और गायों को बुलाते जो नहीं आती, किसी कारण से पिछड़ गई हैं उनको बुलाते, पिशंगी धवली कालिंदी पीताम्बरी गंगे मधुसूदनी इत्यादि नाम, ऐसे नाम पुकारते और क्या करते, ये तो दिन में शाम के समय में, और रात में ऐसे अस्फुटी ध्वनि करते बंसी से, राधे ललिते विशाखे चित्रे चंपकलते अनंग मंजरी रूप मंजरी इत्यादि नाम बंसी में यहीं पर पुकारते, पेड़ की डाल के ऊपर में चले जाते और वहीं से बंसी ध्वनि करते और सब लोग यहीं पर एकत्रित हो जाती। कभी कभी राधिका जी उल्लेख किया, राधिका जी इस मार्ग से जाती थी और कृष्ण गोदोहन कर रहे हैं, सखियों ने कहा जी इस रास्ते को छोड़ दो उधर से चलें। राधे ने मैं क्या इनसे डरती हूँ, तुम लोग उधर से जाओ हम तो इधर ही से जाएंगे। आज यदि सखियां कहती जैसे इधर से चलो तो वो क्या कहती? तो वो वही भाई हम तो इधर ही चलेंगे, तो सखियां उनके साथ में आ रही हैं और कृष्ण गोदोहन करने के लिए वो वहीं पर बैठे हैं
नंदबाग
और रास्ता के निकट में बैठे हैं, रास्ते से दूर नहीं, रास्ते से एकदम सट करके एक दो चार पांच हाथ दूर केवल बस। और वो राधिका जी जा रही हैं, देखना चाहिए उनको सीधा रास्ता घूंघट में निकाल दिया है, ऐसे तिरछी देख रही हैं और चली जा रही हैं। और कृष्ण ने ऐसे जोर से गाय का धार काढ़ा
घूंघट के अंदर,
बस एकदम सब भर गया। सब लोग हंसने लग गए, सीतामा इत्यादि भी ताली बजा करके हंसने लग गए। राधा जी भीतर भीतर में रोष हुआ,
बाहर में
रोष हुआ, भीतर से आनंद, यहीं पर तरह तरह के भाव वहां पर उदित होने लग गए। इस सब का नूज्वल नीलमणि में इन सब का वर्णन किया है, ये सनातन गोस्वामी को जरूर सुना रहे होंगे, वो यहाँ पर सब हो रहा है। तो वहां पर राधा जी जब आगे थोड़ी सी चली गई तो उनकी माला थी मणियों की वो टूट करके बिखर गई, बिखर गई तो देखने लगी और देख करके किधर देख रही हैं, मणिमाला तो नीचे गिर रही है और देख रही हैं कृष्ण की तरफ में देख रही हैं, बैठ गई। सखियां उनको ले रही हैं, एक सखी बोली अरे ये छोटी छोटी तुच्छ माला इसको छोड़ दो, अरे हमारा मरी माला बड़ी प्रिय है, इसके धारण के बिना मैं रह नहीं सकती। बड़ी बड़ी मालाएं हैं, जल्दी से हम चुन लेंगे। बैठ गई ने, इधर बैठी और इधर से दृष्टि करके इधर उठा रही हैं, कृष्ण को देख रही है, कृष्ण भी देख रहे हैं। इस प्रकार का ये सब रूप गोस्वामी ने यहाँ सब वर्णन किया इन लीलाओं का, लाखों लाखों लीलाएं हैं। अब समय हो गया हम रूप गोस्वामी की वंदना करके, चरण की वंदना करके, उनके कृपा प्रार्थना करके अभी चलेंगे वहाँ पर तेर कदम्ब। हमारे यहाँ पर बैठे हैं बाबा जी, बहुत बचपन से छोटी उम्र से यहाँ पर हैं, हम तो 50 वर्ष से आ रहे हैं, इनको बहुत दिनों से मैं देख रहा हूँ, इसको इस स्थान को इन्होंने ही चेताया। ये सब जो देख रहे हैं ये सब इन्होंने, सुंदर हरी भरी ये पेड़ सब सूख गए होते, यहाँ पर इन्होंने सरोवर खुदवाया अपने, कमल के फूल इसमें लगाए थे, इनके पानी से सब पौधों को सींचते हैं और चारों तरफ में हरियाली बने। वहाँ पर भी कितने कदम्ब के वृक्ष लगाए थे, किंतु फिर बाढ़ आकर के गड़बड़ हो जाती है, पशुओं से कोई तोड़वा भी देते हैं, तभी कांटा कुछ चारों तरफ से घेर करके सुंदर सुहावना बना रखे हैं। हम लोग इन्हीं की वजह से इस छत्र छाया में पीलू वृक्ष के नीचे कुंज में हम लोग बैठे हुए रूप गोस्वामी की महिमा और राधा कृष्ण की महिमा का गान कर रहे हैं। रूप गोस्वामी इत्यादि की कृपा उनको मिली होगी, हम लोगों को भी कुछ कृपा ये लोग सब वितरण करे, यहाँ की धूलि कणा हमारे ऊपर में कृपा करे, यही प्रार्थना करके हम चलेंगे। कदम्ब, दिस इज न्यू वन टे कदम्ब, न्यू कदम, ओल्ड हैज गन।
इज दैट यू टेक शेल्टर ऑफ राधारानी डायरेक्टली and she will help you to approach Krishna very soon. This is the idea of coming to Vrindavan.
This fact is corroborated by Krishna in the 11th canto of Srimad Bhagavatam, 12th chapter, 1st verse, where he says, "My dear Uddhava, you may know it from me that the attraction I feel for devotional service rendered by my devotees is not to be attained even by the performance of mystic yoga, philosophical speculation, ritualistic sacrifices, the study of Vedanta, the practice of severe austerities, or the giving of everything in charity. These are, of course, very nice activities, but they are not as attractive to me as the transcendental loving service rendered by my devotees." How Krishna becomes attracted by the devotional service of his devotees is described by Narada in the Srimad Bhagavatam, 7th canto, 10th chapter, 37th verse. There Narada addresses King Yudhishthira while the king is appreciating the glories of the character of Prahlad Maharaj. "A devotee always appreciates the qualities of other devotees."
Yes, that is the sign of devotee. Appreciation, the activities of devotee. This appreciation means a devotee who is actually freed from all contamination, he does not find any fault with another devotee. That is the sign. He does not think himself that he is bigger devotee or greater devotee than another. He thinks himself as the lowest of all. As Chaitanya Chaitamrita author, Kaviraj Goswami said, "Purisher ki thaite mohi se loghishta." I am lower than the insect within the stool. Jagai madhai hoite mui se papist. I am greater sinner than Jagai and Madhai. More naam jai loy tar punno khoy. Anyone who takes my name, immediately all the result of his pious activities becomes vanquished. He is placing like that. Yes, it is not imitation or any bluff. Is any devotee who is actually advanced, he feels like that. Just like great scientist, Sir Isaac Newton, he used to say that, "I have simply collected a few grains of sand in the ocean of knowledge." Yes, he used to say. But actually that is the fact. Everything is unlimited. So nobody should be proud falsely that he has become a great devotee. Everyone should be very humble. Dinadapi sunichena tarorapi sahishnuna amanina manadena pitaniya sadaya. If one thinks that he has become very advanced in devotion, then that is very dangerous. Chaitanya Mahaprabhu said, Guru mare murkha dekhi korila shasan. My spiritual master saw me a great fool. Therefore he has chastised me. That don't try to read Vedanta, chant Hare Krishna. He presented himself like that. Is Chaitanya Mahaprabhu murkha? But that is the conception, advanced devotee. They never think that they are very highly advanced devotee. What is advanced devotee? What devotion we can offer to Krishna? He is unlimited. He is kindly accepting our little service. That's all. Don't be proud of becoming a great devotee. That is the cause of fall down. Thank you very much.
How Krishna becomes attracted by the devotional service of his devotees is described by Narada in the Srimad Bhagavatam, 7th canto, 10th chapter, 37th verse. There Narada addresses King Yudhisthira while the king is appreciating the glories of the character of Prahlad Maharaj. A devotee always appreciates the activities of other devotees. Yudhisthira Maharaj was appreciating the qualities of Prahlada, and that is one symptom of a pure devotee. A pure devotee never thinks himself as great. He always thinks that other devotees are greater than himself. The king was thinking, Prahlad Maharaj is actually a devotee of the Lord, while I am nothing. And while thinking this, he was addressed by Narada as follows. My dear King Yudhisthira, in this world, you, the Pandava brothers, are the only fortunate people. The Supreme Personality of Godhead has appeared on this planet and is presenting himself to you as an ordinary human being. He is always with you in all circumstances. He is living with you and covering himself from the eyes of others. Others cannot understand that he is the Supreme Lord, but he is still living with you as your cousin, as your friend, and even as your messenger. Therefore, you must know that nobody in this world is more fortunate than you. In the Bhagavad Gita, when Krishna appeared in his universal form, Arjuna prayed, My dear Krishna, I thought of you as my cousin brother, and so I have shown disrespect to you in so many ways, calling you Krishna, or friend, but you were so great that I could not understand. So that was the position of the Pandava. Although Krishna is the Supreme Personality of Godhead, the greatest amongst all greats, still he remained with those royal brothers, being attracted by their devotion, by their friendship, and by their love. That is the proof of how great this process of devotional service is. It can attract even the Supreme Personality of Godhead. God is great, and devotional service is greater than God, because it attracts him. People who are not in devotional service can never understand what great value there is in rendering service to the Lord. Stages of devotion. The three categories of devotional service which Srila Rupa Goswami describes in Bhakti Rasamrita Sindhu are listed as devotional service in practice, devotional service in ecstasy, and devotional service in pure love of Godhead. There are many subheadings in each of these categories. Generally, it is understood that in the category of devotional service in practice, there are two different qualities. Devotional service in ecstasy has four qualities, and devotional service in pure love of Godhead has six qualities. These qualities will be explained by Srila Rupa Goswami later on. In this connection, Srila Rupa Goswami suggests that the person eligible for Krishna consciousness or devotional service can be classified by his particular taste. He says that devotional service is a continual process from one's previous life. No one can take the devotional service unless he has had some previous connection with it. For example, suppose in this life I practice devotional service to some extent. Even though it is not 100% perfectly performed, still, whatever I have done will not be lost. In my next life, from the very point where I stopped in this life, I shall begin again. In this way, there is always a continuity. But even if there is no continuity, if only by chance a person takes interest in a pure devotee's instruction, he can be accepted and advanced in devotional service. Anyway, for persons who have a natural taste for understanding books like the Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam, devotional service is easier than for those who are simply accustomed to mental speculation and argumentative processing.
So, Narad Muni instructed to Vyasdev under the verse Tattva Sadhanmam Charanambujam Hari. Even one takes to devotional service, takes shelter of the lotus feet of Lord Krishna, somewhere or other, Kamat Lobhat Bhayat, as it is stated in the Srimad Bhagavatam, just like the gopis, they took shelter of Krishna superficially by lusty desire. But it was not lusty desire. It was pure love. But in the material world, same thing will be considered as lusty desire. So, where is the difference between love of God and lusty desire? Because ordinary men will consider that gopis were attracted by Krishna in lusty desire. The Chaitanya Charitamritakar, Krishnadas Kaviraj Goswami, he said that there is difference between material lusty desire and love of God. He has compared that love of God is just like gold and lusty desire is just like iron. The difference between lusty desire and love of God is in the material world, which is going on as love, that is lusty desire, because the party, both the party are interested in individual sense gratification. But here, the gopis or any devotees, they want to satisfy the senses of Krishna. That is the difference between material lusty desire and love of God. Atmendriya tripti vancha tarnam kam. When one desires one's own sense gratification in the material world, suppose a boy loves a girl and a girl loves a boy, that is personal sense gratification. As soon as the personal sense gratification is not satisfied, immediately the so-called love is divorced, no more love. In the Kali Yuga, it is stated in the Shastra, Dampatya Ratime Vahi. In love between husband and wife will be disturbed as soon as there is no satisfaction of sex desire. Dampatya ratime vahi. And in the Western countries we find, in our country also it has already begun, there are so many divorce cases. Mostly the divorce cases take place when there is disturbance in sex satisfaction. So that is lust. But here, in the case of Krishna and gopis, that is different. The gopis used to dress themselves so that Krishna will feel satisfaction, for Krishna's satisfaction. They used to dress for Krishna's satisfaction. That is, of course, very difficult to understand, but we should learn from the Shastras. These gopis had no sense gratification desires. They wanted to satisfy Krishna. Krishnendya Titti Vancha Tar Nam Prem. Atmendya Titti Vancha Dhare Tar Nam Kaam. So that is the difference. Love of Krishna means to satisfy Krishna, not satisfy sense gratification. The practical example is from Bhagavad Gita, Arjuna. Arjuna, in the beginning, he wanted to satisfy his senses. He declined to fight with his grandfather, with his teacher, with his nephew and brother on the other side. He thought that upon their death, he will not be satisfied. That means his sense gratification. But at the end, when he understood Bhagavad Gita, the essence of Bhagavad Gita, sarva-dhanman parityajya mam ekam saranam vraja, our duty is to satisfy the senses of Krishna. So then, to satisfy Krishna, he killed his kinsman, his grandfather, his teacher. So that is required, satisfaction of Krishna. Not satisfaction of personal interest. Go on to me.
To support this statement, there are many authoritative assertions by the learned scholars of bygone ages. According to their general opinion, a person may become governed by certain convictions derived by his own arguments and decisions. Then another person, who may be a greater logician, will nullify these conclusions and establish another thesis. In this way, the path of arguments will never be safe or conclusive. The Srimad Bhagavatam recommends, therefore, that one follow in the footsteps of the authorities. Here is the general...
Mahajana jina gatasya pantha. You cannot come to the conclusion what is sadhana and sadhana by simply argument. Tarka pratishtha. By argument we cannot establish. Sutayo vibhinya, the scriptures are the many varieties. Sutayo vibhinya, naso manijya samatangna bhinnam. And every philosopher must differ with another philosopher. Therefore, mahajana jena gatasya pantha. We have to follow the footprints of great authorities. They are also mentioned in the Srimad Bhagavatam, great authorities, Svayambhu Narada Sambhu, Kapila Kumara Manu, Prahlada Janaka Bhishma, Balivaya Sakhi Vayam. Jamaraj said that these are the eight authorities. Therefore, you have got Sampradaya, Brahma Sampradaya, Rudra Sampradaya. Lakshmi Sampradaya, Sri Sampradaya, and Kumar Sampradaya, the present Acharyas, there Ramanu Sampradaya, Sri Sampradaya, Madhva Sampradaya, Brahma Sampradaya, in this way. So we have to follow the footprints of the Sampradaya. That's like we are Gauriya, Madhva Gauriya Sampradaya. We are following the footprints of Chaitanya Mahaprabhu as enunciated by the six Goswamis, Sri Rupa Sanatana Bhattaraghunath, Sri Jeev Gopal Bhattadasa Raghunath,